हरे कृष्ण। पिछले रविवार को चर्चा हम लोग कर रहे थे एक बहुत ही महान भक्त भगवान के, श्रीपद सनातन गोस्वामी, जो वृंदावन के छह प्रमुख या छह बहुत प्रसिद्ध गोस्वामियों में से एक हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संबंध आचार्य माने जाते हैं, अर्थात शास्त्रों में तीन चीजें हैं।
इसको थोड़ा साउंड थोड़ा बढ़ाना।
शास्त्रों में तीन चीजें हैं, सारे वैदिक शास्त्रों में। एक है भगवान से हमारे संबंध को जानना, और दूसरा उस संबंध को जानकर कैसे उस संबंध को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस मार्ग को सीखना, और फिर अगर हम ये करते हैं तो इसका लाभ क्या है। ये तीन चीजें शास्त्रों में कही गई हैं। तो सनातन गोस्वामी ये संबंध आचार्य कहलाते हैं, अर्थात इन्होंने वो शास्त्र दिए, इन्होंने उन विग्रहों को प्रकट किया जो हमारा संबंध भगवान से जोड़ते हैं। इनके छोटे भाई रूप गोस्वामी ये अभिधेय आचार्य हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी के ग्रंथ हमें भक्ति का मार्ग सिखलाते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो इसीलिए वो अभिधेय आचार्य कहलाते हैं। और प्रयोजन अर्थात उसका फल क्या है, रघुनाथ दास गोस्वामी वो हमें सिखलाते हैं। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी ये हमारे संबंध को स्थापित करते हैं। पिछली बार हम उनकी जीवनी को सुन रहे थे, कैसे बचपन से ही उन्होंने अपने घर के आसपास वृंदावन का वातावरण बनाया हुआ था, और फिर कैसे जब वो बड़े हुए, उन्हें स्वप्न में, बहुत ज्यादा बड़े नहीं हुए थे, स्वप्न आया, एक ब्राह्मण ने उनको श्रीमद् भागवत प्रदान की, और फिर जब स्वप्न टूटा तो वही ब्राह्मण भागवत को लेकर आए। इस तरह उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। भागवत के विषय में वो कहते हैं, मद एक बंधु, मत संगीन, मत गुरु, मन महाधना। और फिर आगे चलकर उन्हें एक नवाब की सेवा करनी पड़ी, जो एक मुसलमान नवाब थे, राजा थे, उनके अधीन रहना पड़ा, और बाद में उन्होंने उनको छोड़ा, उनको जेल में डाला गया। ये सब कथा हम लोग पिछली बार सुन चुके हैं, और कैसे वो जेल से भागे। उन्होंने कहा, मैं हज पर जाना चाहता हूं। इस्लाम धर्म में हज पर जाना ये एक बहुत पुण्य का काम माना जाता है, तो लोग मदद करते हैं। अगर कोई हज पर जाना चाहता है तो लोग धन देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम हज पे नहीं जा सकते, कम से कम हम जिस व्यक्ति को मदद करेंगे तो फिर उसका लाभ हमें मिल जाएगा, इसलिए बहुत सी मदद की जाती है। और यही कारण था कि सनातन गोस्वामी ने उसको कहा कि मैं हज पे जाना चाहता हूं, तो अगर मैं हज पे जाऊंगा तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें भी लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी उसको कुछ धन देकर वहां से निकल पड़े, और फिर जंगल के रास्ते होते हुए किसी तरह चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई। तो ये कथा हम सब सुन चुके हैं, थोड़ी बहुत लीलाओं को कहना प्रारंभ किया था। मदन मोहन विग्रह कैसे प्रकट हुए, तो ये भी हमने आपको बताया था कि कैसे सनातन गोस्वामी को वो मिले, और सनातन गोस्वामी कैसे उनको रखते थे। सनातन गोस्वामी के पास कुछ नहीं था, न कुटीर थी, न स्थान था। दरअसल बाद में कुछ भक्तों ने उनके लिए कुटीर बनाई, वो भी तब जब एक बार ऐसा हुआ कि वृंदावन में एक स्थान है पावन सरोवर, बहुत सुंदर स्थान है, तो पावन सरोवर में एक समय सनातन गोस्वामी वहां पर अपना भजन कर रहे थे। काफी समय से कुछ खाया पिया नहीं था। सनातन गोस्वामी जैसे भक्त शारीरिक आवश्यकताओं के परे होते हैं, अर्थात वो भगवान की भक्ति में इतने रमे होते हैं कि उन्हें अपने शरीर के आवश्यकताओं के प्रति कोई ध्यान नहीं होता। कब खाना है, कब सोना है, हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। समय होते ही हमें नींद आ जाती है, भूख लग जाती है। अगर ये प्रवचन थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप सबको चिंता हो जाती है कि अरे समय हो रहा है। मतलब आपको अपने पेट की चिंता नहीं, प्रसाद के ठंडे होने की चिंता होती है, भूख नहीं लगती है। कि ना आपको लगता है प्रसाद ठंडा हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, इसीलिए आप लोग सोचते हैं कि जल्दी बंद हो जाके हम लोग खा सके। तो हम लोग उस स्तर पर हैं कि जहां हमें खाना पीना सोना, प्यास लगना, भूख लगना, ये जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, इन्हीं में हमारा सारा जीवन फंसा हुआ है। लेकिन सनातन गोस्वामी जैसे भक्त वो इन आवश्यकताओं के परे थे। जैसे एक बहुत महान भक्त हुए माधवेंद्रपुरी, वे एक अजागर वृत्ति का पालन किया करते थे। अजागर वृत्ति यानी अजगर होता है ना, तो अजगर क्या करता है, वो अपना शिकार करने जाता नहीं है, पड़ा रहता है। और जैसे ही कोई प्राणी आता है, कोई पशु आता है, कोई आता है, उसको खा लेता है, वो जाता नहीं है कहीं पे। तो इसी तरह इसको अजागर वृत्ति का अर्थ क्या होता है कि जो भिक्षुक, जो याचक, जो वैरागी, जो कहीं पर जाकर मांगता नहीं है, अगर कुछ आ गया तो ठीक है खा लिया, नहीं कई दिन तक भूखे। माधवेंद्रपुरी भी ऐसे ही एक याचक थे। तो सनातन गोस्वामी कई दिनों से ऐसे ही थे, पावन सरोवर के तट पर कृष्ण का भजन कर रहे थे। वैसे हम लोगों को उस आनंद का अनुभव नहीं है जो कृष्ण की भक्ति में अपने शरीर की आवश्यकताओं के परे जाकर होता है। शरीर की आवश्यकताओं में रहते हुए हम एक आनंद लेते हैं, भक्ति का आनंद, लेकिन वो शरीर की आवश्यकताओं में रहते हुए। लेकिन भक्ति का एक आनंद है जहां हम शरीर की आवश्यकताओं से परे चले जाते हैं, जहां हमें भूख प्यास नींद ये कृष्ण कथा सुनते हुए नहीं आती। जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे थे तो सुनते सुनते उन्हें ऐसा लगा कि मानो सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कि ये थक गया है, भूख प्यास लगी होगी, एक दिन हो गया, दो दिन हो गए। तो तुरंत उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, ना तो मुझे भूख लगी है, ना प्यास लगी है, ना नींद आ रही है। ये तो कलयुग में आगे आने वाले लोग कृष्ण कथा सुन के सोएंगे, लेकिन मैं अभी नहीं सोऊंगा। तो परीक्षित महाराज नहीं सोए। तो ये शारीरिक स्तर से ऊपर है। तो सनातन गोस्वामी ऐसे ही बैठे थे तो अचानक एक लड़का आया और एक मटके में दूध लेकर आया। वो बाबा बाबा ये दूध ले लो, ये पावन सरोवर पर हुआ था, अभी हम लोग वृंदावन जाएंगे तो उस पावन सरोवर में भी जाएंगे दर्शन के लिए, तो दूध ले लो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम्हें किसने कहा ये दूध लाने के लिए? उसने कहा नहीं, यहां इस क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहता, भगवान का जो धाम है, भगवान के धाम में भगवान भूखा नहीं रखते हैं, व्यक्ति को बहुत खिला पिला के रखते हैं, खास करके जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में जब आप जाते हैं तो बहुत खाने को मिलता है, भगवान के मंदिर के बाहर ही बिठाकर खिलाते हैं पंडित। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, मैंने ऐसे ही मैं बैठा हूं। तो उसने बालक ने कहा कि यहां बहुत सारे लोग आते जाते हैं, उन्होंने बताया। तो सब लोग क्यों नहीं लाए, तुम ही क्यों लेकर आए दूध मेरे लिए? सनातन गोस्वामी भी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, सब जान मंत्री रह चुके थे। तो पूछे तुम ही क्यों लेकर आए, सब क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन सब ने मुझे बोला कि जा रहे हो वहां पर ये दूध दे देना। तो सनातन गोस्वामी ने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा देर बैठ जाओ यहां पे, मैं दूध पी लेता हूँ, तुम्हारा मटका वापस कर। नहीं नहीं, उतना समय नहीं है मेरे पास, बहुत से और लोगों को अभी मुझे सेवा करनी है। देखिए, भगवान भी भक्तों की सेवा के लिए आतुर रहते हैं। जितनी आतुरता, जितना उत्साह भक्तों में भगवान की सेवा के लिए है, उससे कहीं ज्यादा आतुरता और उत्साह भगवान में भक्तों की सेवा के लिए है। और क्योंकि भगवान में सेवा के लिए आतुरता है, इसीलिए हमारे अंदर सेवा के लिए आतुरता है, क्योंकि हम हैं तो भगवान के ही अंश। तो भगवान ने कहा नहीं, बस मैं जा रहा हूं, मुझे और जाना है, तो फिर वो चले गए। सनातन गोस्वामी ने दूध पिया और वो दूध अमृत भी उसके सामने कुछ है। भगवान जब स्वयं दूध निकाल कर लेकर आए, सोचिए भगवान का काम क्या है गोलोक में, गायों का दूध निकालना है ना, गायों को साफ करना, गोबर हटाना, ये काम है भगवान का। भगवान भी बहुत बिजी रहते हैं गोलोक में, समय नहीं है। सुबह से उठ के जो यशोदा मैया हैं, सुबह सुबह उठा देती हैं और भगवान को काम पे लगा देती हैं, और फिर गायों को पकड़ते रहते, खेलते भी रहते हैं, गायों की बछड़ों की पूंछ को पकड़कर लटक जाते हैं, और फिर बछड़ा भागता है और कृष्ण पूरे गोबर में लेटते हुए चलते जाते हैं। तो खैर, कृष्ण चले गए और सनातन गोस्वामी ने जब वो दूध पिया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर वो ऐसा दूध था कि दूध पीते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, प्रेम के आंसू, कौन है ये व्यक्ति। और फिर उन्हें आभास हुआ कि ये कोई और नहीं हो सकते, स्वयं श्री कृष्ण है। और उसके बाद वहां के भक्तों ने जब उनसे कहा कि महाराज अब तो आप कोई कुटिया उटिया बना लीजिए, तो उन्होंने कहा हाँ, कृष्ण को मेरी सेवा नहीं करनी चाहिए, अगर मैं ऐसे ही घूमूंगा तो कृष्ण फिर से आ जाएंगे मेरी सेवा करने, इसीलिए कुटिया बना दो, मैं अंदर रहूंगा, बाहर नहीं रहूंगा। तो ऐसे भक्त हैं सनातन गोस्वामी। एक समय सनातन गोस्वामी का जन्म दिवस था, और स्वाभाविक है रूप गोस्वामी जो उनके छोटे भाई हैं, वो चाहते थे कि सनातन गोस्वामी को खीर बहुत पसंद है, तो उन्होंने सोचा मैं खीर बनाकर खिलाना चाहता हूं। लेकिन थे तो वैरागी, सब कुछ त्याग दिया था, तो खीर बनाए कहां से। खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चावल चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, तो कुछ था ही नहीं। और वो जाकर मांग तो नहीं सकते थे लोगों से कि मुझे खीर खानी है, भिखारी मतलब उसके पास चुनाव नहीं होता है। आजकल के कलयुग के भिखारी अलग बात है, वो तो फटा हुआ नोट भी नहीं लेते हैं, वो भी कहते थोड़ा अच्छा वाला नोट दो। हमने खुद देखा है, बंबई में एक जगह हम खड़े थे, तुमने देखा कि सिग्नल था वहां पर, तो सिग्नल जब आता गाड़ियां खड़ी होती तो सब भिखारी वहां जाते हैं कुछ मांगते हैं। तो एक व्यक्ति ने गाड़ी का शीशा खोल के कुछ पैसे उसको दिए, चेंज चिल्लर उसको दे दिया, ये सोच के भिखारी है चलो मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूं। सबके सामने उसने वो लिया और उसके मुंह पे मार दिया, ऐसे जैसे बोल रहा हूं भिखारी हूं क्या मैं। मतलब वो लोग भी नहीं लेते आजकल, लेकिन सही दृष्टि में भिक्षुक मतलब वो कोई मांग नहीं सकता, जो मिले उसको स्वीकार करना है। तो सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनाना चाहते थे, रूप गोस्वामी चिंतन कर रहे थे, इतने में एक लड़की आई, छोटी सी लड़की, और उसने सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से कहा कि ये मैं आपके लिए दूध और ये शक्कर और ये चावल लेकर आई हूं। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हें किसने बताया। नहीं बस मैं सबको बांटती हूं, आपको भी थोड़ा दे रही हूं। बहुत खुश हो गए, उन्होंने लिया, उसकी खीर बनाई, सनातन गोस्वामी को दिया, भगवान को भोग अर्पित किया, फिर सनातन गोस्वामी को दिया। तो सनातन गोस्वामी ने जैसे ही खीर खाई, उन्होंने बुलाया रूप गोस्वामी को, इधर आओ। तो रूप गोस्वामी ने कहा क्या हुआ, भाई खीर किसने बनाई। कहा मैंने बनाई है, दूध कहां से लाए, शक्कर कहां से लाए। तो रूप गोस्वामी थोड़ा घबरा गए, बड़े भाई ऐसे डांट रहे हैं, पूछा क्या हुआ आप बताइए। उन्होंने कहा नहीं पहले बताओ। उन्होंने कहा एक लड़की आई थी, गांव की एक लड़की, वो दे के चली गई, और इसीलिए हम उसको मैंने बना दिया और आपको खिला रहा हूं, कोई गलती हो गई। तो उस समय सनातन गोस्वामी ने कहा कि इसका स्वाद चखो, ऐसा स्वाद ये दिव्य स्वाद है, ये किसी साधारण दूध से हो ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने कहा, वो जो लड़की आई थी वो श्रीमती राधा रानी थी, और फिर उनको डांटा, तुमने क्यों लिया उनसे। अब रूप गोस्वामी ने कहा, मुझे क्या पता वो राधा रानी, अरे कोई आई बालिका ने दे दिया, मैंने ले लिया। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हम लोग यहां श्रीमती राधा रानी की सेवा करने आए हैं, ये वृंदावन में हम उनसे सेवा लेने नहीं आए हैं, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आगे से कभी किसी से सेवा नहीं लेना। देखिए ये जो घटनाएं हैं, ये एक तरफ तो भगवान का, श्रीमती राधा रानी का अपने भक्तों के प्रति प्रेम दर्शाती हैं, लेकिन दूसरी ओर हमें कितना महत्वपूर्ण संदेश देती हैं कि हमारा जीवन भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। हमें कभी सेवा लेने की आशा नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये सेवा कोई मेरी करे, कोई वो सेवा करे, उल्टा हमें करना चाहिए जितना हो सके, ये जीवन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तब तो इस जीवन का लाभ है। सनातन गोस्वामी जैसे भक्त इन चीजों को सिखलाते हैं, और अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विशेष करके जब हम भगवान की सेवा करते हैं। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के छोटे भाई थे अनुपम, और उनके लड़के थे जीव गोस्वामी, वे भी इनके पास आकर रहा करते, शिक्षण करते, रूप गोस्वामी को अपना गुरु बनाया हुआ था। एक दिन रूप गोस्वामी के पास एक बहुत बड़े पंडित आए, दिग्विजय, सारी दुनिया में जीतते हुए आ रहे थे, उनके पास बहुत बड़ा पत्र था, सबके सिग्नेचर थे, जितने बड़े बड़े विद्वान है उन सबका नाम और उसके आगे सिग्नेचर, जिसमें लिखा था मैं हार गया। और आए रूप गोस्वामी के पास, उनसे कहा कि मुझसे आप शास्त्र में वाद विवाद कीजिए, नहीं तो यहां साइन कीजिए कि आप हार गए। रूप गोस्वामी ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया, उन्होंने तुरंत साइन कर दिया, मैं हार गया आपसे। इसलिए नहीं कि वो हार गए थे, इसलिए कि वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, वो सोच रहे थे उतने समय में मैं कुछ ग्रंथ लिख लूंगा। तो यहां पर जब सिग्नेचर कर दिया तो जीव गोस्वामी जो शिष्य हैं रूप गोस्वामी के, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उनके पास आया फिर दिग्विजय पंडित, उसने दिखाया देखो तुम्हारे गुरु रूप गोस्वामी हार गए मुझसे। ये देखकर जीव गोस्वामी को बहुत गुस्सा आया, उसको अपने ऊपर अहंकार नहीं था, लेकिन जब उसने गुरु का अपमान कर दिया कि तुम्हारे गुरु देखो मुझसे हार गए, तो जीव गोस्वामी ने कहा कि तुम जानते नहीं हो ये कौन है, किसके लिए ऐसा कर रहे हो। और फिर जीव गोस्वामी ने उनको हरा दिया, तुम्हारे को हराना तो 5 मिनट का काम है मेरे लिए, तुम मेरे गुरु की बात करते हो, मैं तुम्हें हरा देता हूं। तो जब ऐसा हुआ उन्होंने बहुत सी बातें कह दी, और जब रूप गोस्वामी को यह पता लगा तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को वृंदावन के बाहर कर दिया। क्यों? तुम्हारे अंदर अहंकार हो गया है, तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े पंडित हो, अरे जब मैंने, जो मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैंने साइन कर दिया हार गया, तो तुम कैसे जीत सकते हो तुम उसे दिखा रहे हो कि तुम श्रेष्ठ हो, बाहर चले जाओ वृंदावन से। तो चले गए और यमुना के किनारे उन्होंने गड्ढा किया रेत में, और उसमें बैठ गए आके। दुख हो गया उन्हें कि क्या कर दिया मैंने, रूप गोस्वामी को दुखी कर दिया। और राख खाया करते थे, केवल राख। तो एक समय सनातन गोस्वामी घूम रहे थे ब्रज में, घूमते घूमते उस गांव में आए, तो उस गांव के लोग कहने लगे, अरे बाबा जी आपको पता है क्या, एक बहुत बड़े बाबा आए हैं। सनातन गोस्वामी ने, अच्छा हाँ बहुत बड़े बाबा। बोले सनातन गोस्वामी ने सोचा कि इतना बड़ा भक्त आया है, हमें नहीं पता, कैसी बात है, कौन है। तो सनातन गोस्वामी ने, वो राख खाने वाले बाबा है। अच्छा हाँ, तो क्या करते? अरे कुछ नहीं करते, दिन भर रोते रहते हैं, पता नहीं क्या है, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, बस दिन भर रोते हैं। यमुना के किनारे एक गड्ढा है, बस उसमें पड़े रहते, लेकिन बहुत बड़े बाबा है। सनातन गोस्वामी ने सोचा, ये कौन सा बड़ा बाबा आ गया वृंदावन में, हमें भी नहीं पता, और राख खा रहा है केवल, और रो रहा है दिन भर। तो सनातन गोस्वामी ने जाकर देखा तो अरे अरे, ये तो जीव गोस्वामी है, उनके भाई का लड़का, क्या हुआ? बोले रूप गोस्वामी ने बाहर निकाल दिया। तो फिर उन्होंने जाके रूप गोस्वामी से पूछा कि, रूप गोस्वामी को उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तुम वेदों की शिक्षाओं को, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को भूल गए हो तो रूप गोस्वामी का नहीं, मैं तो कभी नहीं भूलता उनकी शिक्षाओं को, मुझे पूरी तरह याद है। तुम्हें याद है चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी? हाँ याद है, बताओ क्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीव पर दया करनी चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए, यही सारे धर्मों का सार है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा फिर से कहो क्या कहा? जीव दया। तो जीव दया, वैसे जीव दया मतलब हर आत्मा पर, हर जीव पर दया करनी चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ये भी तो एक जीव है ना, जीव गोस्वामी, इसके ऊपर भी तो दया करनी चाहिए। तो फिर रूप गोस्वामी समझ गए और फिर से वापस बुलाए। तो ऐसे ये बहुत सुंदर लीलाएं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की अलग अलग स्थानों पर हुई हैं, जहां पर उन्होंने भगवान की भक्ति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। सनातन गोस्वामी के प्रति भगवान का इतना प्रेम था कि सनातन गोस्वामी ने एक नियम पाल रखा था, नियम बनाया था। क्या नियम था? हर रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, हर रोज। और जब बहुत बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, तो भगवान ने आकर कहा छोड़ दो अब, ये क्या तुम रोज रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते हो? तो सनातन गोस्वामी ने कहा मेरा नियम है, मैं क्या करूं, मैंने नियम बनाया है, मैं छोड़ नहीं सकता। तो भगवान ने उनको एक शिला दी, गोवर्धन शिला, और कहा बस इस शिला की तरफ आप प्रदक्षिणा कर लेना, आपको गोवर्धन परिक्रमा का लाभ मिल जाएगा। आज भी वो शिला वृंदावन के एक मंदिर राधा दामोदर मंदिर में रखी हुई है, जिस पर भगवान की बांसुरी का निशान है, उस शिला पर, उस पत्थर पर। और आज भी भक्त उस शिला की परिक्रमा करते हैं, मतलब जो गोवर्धन की नहीं कर पाते वो उसकी तो कर ही लेते हैं। आप में से भी जो हम लोगों के साथ अप्रैल में वृंदावन जाएंगे, तो अगर आप लोग पूरी गोवर्धन, वैसे तो बहुत अच्छा है गोवर्धन की परिक्रमा करें, गोवर्धन पर्वत की, जैसे श्री कृष्ण ने की थी, लेकिन आप में से जो ना कर पाए तो कम से कम राधा दामोदर मंदिर में चार परिक्रमाएं, उस छोटी सी है वो तो समय नहीं लगेगा, तो इतनी सी शिला है तो उसकी चार परिक्रमा कर ले तो गोवर्धन परिक्रमा का लाभ मिलेगा। ये शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, कलयुग में सब शॉर्टकट चाहिए हम लोगों को। तो ऐसे सनातन गोस्वामी से प्रेम उन्होंने दिखलाया। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, चाहे वो सनातन गोस्वामी हो, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनका एक महान गुण होता है कि ये भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान से प्रेम के कारण भगवान इनसे प्रेम करते हैं। इसलिए एक बहुत सुंदर भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, जो भगवान के भक्तों के महत्व को समझाता है। तुम्हारी इच्छा है कि ये भजन को गाएं, अगर आप सबकी अनुमति हो तो। आप सब गाना चाहते हैं? ये पेज नंबर 45 पर है, अगर आपके पास किताबें हैं या जिनके पास नहीं है थोड़ी बहुत यहाँ है वो दे दी जाए। पेज नंबर 45 बहुत सुंदर भजन है, इसमें वैष्णवों के महत्व को गाया गया है, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे इसको कहने का।
हे बार करुणा कर वैष्णव गोस्वामी, हे बार करुणा कर वैष्णव गोस्वामी, पतित पावन तुम दिन के हो नाम, গেলে পাপ দূর যায়। হে মন দয়াল প্রভু কে বকো থপা সচন পবিত্র কর তোমার হরিষানে রাখে হরে হরি নামে রাধে নাই করি গোবিন্দ করে নাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে হরে
হরে কৃষ্ণ। তো সনাতন গোস্বামী কা বর্ণন কর রহে থে ভক্তো কি উপস্থিতি কা বর্ণন, আর এস সময় হমারে বীচ মে বৃন্দাবন মন্দির সে His Grace देवानंद पंडित प्रभु पधारे हैं, इनका तीन बार हरि बोल कहकर स्वागत करेंगे। तो आप लोगों को वो कुछ भक्ति के विषय में दिखलाना भी चाहते हैं और बतलाना भी चाहते हैं, तो थोड़ा सा घूम जाएंगे सब लोग, थोड़ा इस तरफ स्क्रीन की तरफ, और माइक वहां पे लगाएं। तो जी यू विल सिट दिस साइड और सो माइक कैन या वी हैव
लंबा वायर दो प्रोजेक्टर को और लैपटॉप को कनेक्ट करने वाला व्हाइट वाला लंबा वायर है ना, वो लेकर कॉर्डलेस वहां तक जाएगा नहीं ना कॉर्डलेस।
आप लोगों की सूचना के लिए बताना चाहते, देवानंद पंडित प्रभु बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, कई वर्षों तक इस्कॉन चौपाटी में उन्होंने सेवा की, और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना कि वो पहले नेवी में काम करते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग नेवी के हैं, इस समय नेवी के बड़े ऑफिसर हैं, तो वो भी नेवी में ऑफिसर थे, रह चुके हैं, और फिर नेवी के बाद उन्होंने इस्कॉन चौपाटी ज्वाइन किया। इस्कॉन चौपाटी में कई वर्षों तक रहने के बाद फिर इस्कॉन बेलगाम में वो अध्यक्ष थे वहां, और उसके बाद अभी इस्कॉन वृंदावन में कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सबका भाग्य है कि वो यहाँ पर आए हैं। वो जल्दी आने वाले थे लेकिन ट्रेन थोड़ी देर हो गई, बहुत बहुत स्लो आ रही थी वो ट्रेन, तो इसलिए थोड़ा सा देर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी वो आए हैं तो उनसे अब हम सुनेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। इस साल जो है चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन का जो है विजिट का 500 साल का ये है एनिवर्सरी है, तो उसी का आपको एक स्लाइड शो करेंगे। तो समबडी कैन रीच तो विल हैव इंटरेक्ट यू यू कैन टेक वन मोर माइंड।
जय राधे जय कृष्ण जय Oh, my God.